يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. اے رسول، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل ایمان والے نہیں، اور یہود میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں، یعنی نبی کی محفلوں میں آتے تھے مگر جاسوسی کرنے کے لیے، جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے، یعنی ان کو جا کر کہانیاں سناتے تھے، وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے تھے، یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں جا کے باہر نشر کرتے تھے، کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی راہ ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے. کیا پتہ چلا؟ لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے. کیا اللہ اور رسول کی اطاعت کے منکر لوگ جھوٹ سننے اور کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں، خواہش نفس کو شریعت الہی پر مقدم رکھتے ہیں اور زبانی ایمان کے دعوے کرتے ہیں جبکہ دل ان کے ایمان سے خالی رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرتے تھے؟ سماعون للکذب، یہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں. اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو، خواہ ان کو ٹال دو، اگر تم ان سے منہ پھیرو گے تو بھی تم کو ہرگز کوئی ضرر نہ پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ کر لو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کرے ہم بھی عدل پسند ہو جائیں. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں، دراصل ایمان اور یقین والے ہے ہی نہیں. یہاں ذرا سا سمجھیے گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، ایک قسم کی مدینہ پہلی اسلامی ریاست ہوئی، اب وہاں پہلے سے موجود یہود تھے جو کسی اور مذہب کے فالوورز تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے دو عدالتیں قائم کی، ایک یہود کے لیے ایک مسلمانوں کے لیے. یہود کی عدالت میں ان کے بڑے جو لیڈرز تھے کعب بن احیار اور کچھ اسی طرح عبداللہ بن سلام وغیرہ، ان کو مقرر کیا، اور جو مسلمانوں کے مقدموں کی عدالت تھی اس میں مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی اور آپ کی غیر موجودگی میں حضرت عمر فیصلے کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں فریڈم آف ریلیجن، مذہبی عدالتیں. آج ہمارے وہ مسلمان جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں اور اقلیتوں میں رہتے ہیں، پھر طلاق کی صورت میں، نکاح کی صورت میں، بچہ کس کو ملے، ایون وراثت کی صورت میں ان کو غیر ملکوں کے قوانین کو اپنانا پڑتا ہے. تو آج اگر اسلام دنیا میں نافذ ہوگا تو وہ اقلیتوں کو ان کے حقوق دے گا. اب یہود کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کو یہود کے پاس جانا چاہیے تھا اپنے مقدمے لے کر، لیکن ان کے جو لیڈرس تھے وہ رشوت لے لیتے تھے، خیانتیں کر لیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر سے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو جو سچا ہوتا تھا نا مقدمے میں، اس کا دل ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی عدالت میں ہے. یہود میں سے جو سچا یہودی ہوتا وہ کہتا مجھے یہودی عدالت سے نہیں، مسلمان عدالت سے لانا ہے. یہ ہے سراج منیرا، یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو بولیے اللہم صلی علی محمد. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات کر کے بتا دیا. کیا آیت نمبر 44 دیکھیے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے. یہ پہلے کی باتیں تھیں جب ابھی وہ پیور تھی. یہودیوں میں سے اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے. اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے سے مول سے نہ بیچو، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں. ہائی لائٹ کر لیجیے اس آیت کو. آیت کے اینڈ پہ کیا آ رہا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافرون اور فاسقون. تین مذہبی کتابیں، ایک یہود کی، ایک نصارہ کی اور ایک مسلمانوں کی، ان تینوں کے اینڈ پہ آخری سبق یہی ملنا ہے. کیا कि इस किताब को सिर्फ चूमो चाटो नहीं बल्कि इसको नाफिस करो। कैसे? वक्त अबना लही फी नफ्स बिन नफ्स वलईन बिल ऐन। और हमने यहूदियों के जिम्मे तौरात में ये बात मुकर्रर कर दी थी कि जान के बदले जान और आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दांत के बदले दांत और खास जख्मों का भी बदला है। फिर जो शख्स इसको माफ कर दे तो वो इसके लिए कफारा है, और जो लोग अल्लाह ताला के नाजिल किए हुए के मुताबिक हुक्म ना करें वही लोग जालिम हैं। अफसोस, आज उम्मत मुस्लिमा के ऊपर भी इसी आयत की जद पड़ रही है। तो अमल और तदब्बुर की बातें लीजिएगा कि झूठी खबरें फैलाने वाले ज़राए अब्लाग से बचिए। एक बात को आगे फैला देना बगैर उसकी तहकीक किए, बगैर अक्ल इस्तेमाल किए, ये फितना फैलाता है, खैर नहीं फैलाता। ऐसे तमाम मीडियम्स का बायकॉट कर दीजिए जो झूठी खबरों को आम करें। इसी तरह दिल की पाकीज़गी के लिए दुआएं मांगनी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तहारत कल्बी। अपने लिए दुआ करें, यकीन करें जब आपका दिल साफ हो जाएगा ना तो आपको हर बुरा बंदा अच्छा लगेगा, हर गुनाहगार जो है वो आपको मज़लूम लगेगा, और सबसे ज़्यादा आपको अपनी फिक्र होगी कि मैं कैसे दूसरों को दीन पहुँचाऊँ ताकि उस तक ये दीन पहुँचे। फिर्याकारी और नेक लोगों से दुश्मनी जैसी बुराइयों से बचना। कुरानी रहनुमाई, तौबा का दरवाज़ा सबके लिए खुला है, अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करनी है। इंसाफ करें और लोगों की बजाय सिर्फ अल्लाह ताला से डरिए और अजर भी उसी से मांगिए। कुरान सीखने सिखाते हुए अपनी नियतों को खालिस रखिए। देखिए ढका छुपा वायरस होता है अंदर से, दिखावे का, रियाकारी का, और भी कई खराबियां होती हैं। हमेशा यहाँ बैठने से पहले अपने दिल को चेक किया करें, क्या मैं अल्लाह के लिए आई हूँ और क्या मैं जो बात बता रही हूँ वो अल्लाह और उसके रसूल की है। फिर गौर व फिक्र की चंद बातें। शरई फैसला कबूल ना करने वाले का दिल तहारत और पाकीज़गी से खाली होता है। रब्बानी यानी बाअमल बनने की कोशिश करनी है। दुनिया के बदले दीन को बेचने वाले आलिम के आमाल ज़ाया हो जाते हैं। कल ऐसा ना हो कि वहाँ अपनी नेकियाँ ढूंढते फिरें और वो सारी गुम हो चुकी हों। हराम माल को सुख्त कहा गया। सुख्त, सुख कहते छिलके को, ऊपर की नेकी, अंदर कुछ नहीं, रूह नहीं है, बस छिलका है ऊपर, खोखली नेकियाँ, इसलिए कि वो नेकियों को बर्बाद कर देता है, यानी अच्छे अमाल का नामो निशान तक मिटा देता है। हर शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत के खिलाफ किसी भी शख्स की ख्वाहिशात और ख्यालात की तबाह करने का हक नहीं है। माफ़ करना कसास लेने से बेहतर इस तरह है कि मजलूम को मिलने वाली मुसीबत और तकलीफ इसके गुनाहों को मिटाती है। यानी ज़रूरी तो नहीं ना कि दुनिया में ही हर चीज़ का बदला मिल जाए, तो माफ़ी बहरहाल बेहतर है। अब आगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा, आयत 46 से, वक़फ़ैना अला आसारिहिम बिसबनि मरियम। और हमने इनके पीछे ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को भेजा जो अपने से पहले की किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाले थे। हमने इन्हें इंजील अता फरमाई जिसमें नूर और हिदायत थी, और वो अपने से पहली किताब यानी तौरात की तस्दीक करती थी, और वो सरासर हिदायत और नसीहत थी पारसा लोगों के लिए। और इंजील वालों को भी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो कुछ इंजील में नाजिल फरमाया है इसी के मुताबिक हुक्म करें, और जो अल्लाह ताला के नाजिल करदा से हुक्म ना करें वो बदकार यानी फासिक है। पहले काफिरून, फासिकून, और आप देखिए कि जालिमून, तीन लफ्ज़ हैं। और हमने आपकी तरफ यानी अब उन्होंने तो अपने अपने दौर में किताबें जो थी उन पे अमल नहीं किया। अब ये आयत बहुत ही गौर से सुनने वाली है, ये उम्मत मुस्लिमा को बता रही है कि ये कुरान आया क्यों। वंजलना इलैकल किताब बिलहक मुसद्दिकल लिमा बैन यदैहि मिनल किताब। और हमने आपकी तरफ हक के साथ ये किताब नाजिल फरमाई है जो अपने से अगली किताबों की तस्दीक करने वाली है और इनकी मुहाफिज है, इसलिए आप इनके आपस के मामलात में इसी अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब के मुताबिक हुक्म कीजिए। इस हक से हटकर इनकी ख्वाहिशों के पीछे ना जाइए। तुम में से हर एक के लिए हमने एक दस्तूर और राह मुकर्रर कर दी है। अगर मंजूर इलाही होता तो तुम सब को एक उम्मत बना दिया जाता, लेकिन इसकी चाहत है कि जो तुम्हें दिया है इसमें तुम्हें आसमाए, तो करो क्या। इस जुमले को आप भी हाईलाइट कर लीजिए, फस्तबिकुल खैरात, बस नेकियों की तरफ जल्दी करो। तुम सब का रुझू अल्लाह ही की तरफ है, फिर वो तुम्हें हर वो चीज़ बता देगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते रहे थे। क्या पता चला, बहसे छोड़ो, इख्तलाफ छोड़ो, इधर उधर की बातों को छोड़ो और दौड़ धूप करो नेकियों की तरफ। नेकी नेकी नेकी, यही मजमून पीछे भी आया था। तो अब आगे देखिएगा नबी सल्लम को क्या नसीहत की गई। वानहकुम बैनहुम बिमा अनज़लल्लाहु वला तत्तबि अहवाअहुम, आप इनके मामलात में अल्लाह की नाजिल करदा वही के मुताबिक ही हुक्म किया कीजिए, इनकी ख्वाहिशों की ताबेदारी ना कीजिए और इनसे होशियार रहिए कि कहीं ये आपको अल्लाह के उतारे हुए किसी हुक्म से इधर उधर ना करें। अगर ये लोग मुंह फेर लें तो यकीन करें कि अल्लाह का इरादा ये है कि इन्हें इनके बास गुनाहों की सजा ही दे डाले, और अक्सर लोग नाफरमान ही होते हैं। अगली आयत बड़ी अहम है। अफ हुक्मल जाहिलियत यबगून वमन अहसन मिन अल्लाहि हुक्मल लिकौमी यूकिनून, क्या ये लोग फिर से जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? यकीन रखने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला से बेहतर फैसले और हुक्म करने वाला कौन हो सकता है? पूरे कुरान में 4 दफ़ा जहालत की बात है, जिसमें से ये पहली बात है। यहाँ हुक्मल जाहिलिया, फिर सूरह अहज़ाब में आप पढ़ेंगे तबरजुल जाहिलिया। इसी तरह से जब चारों जगह इकट्ठी होंगी तो आपको इनका एक रब दूंगी। यहाँ बस समझ लीजिए जाहिलियत क्या है, शरीयत से पहले वाली जिंदगी। अल्लाह ने इतनी प्यारी शरीयत दी, अदल और इंसाफ वाली दी, तुम जुल्म चाहते हो, शिर्क चाहते हो, बिदात चाहते हो। तो आज उम्मत मुस्लिमा को देख लीजिए, जहालत वाले सारे काम, औरतों को हकीर जानना मर्दों के निस्बत, और इसी तरह तबरुज भी है, सूद भी है, यानी इस्लाम से पहले के दौर को जाहिलियत का दौर कहते थे। तो आज हम मॉडर्निज्म कहते हैं ना, इस्लाम उसको जहालत कहता है। अल्लाह ताला हमें जहालतों से बचा दे। अब करना क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया, ऐमन वालो तुम यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करे वो बेशक इन्हीं में से है, जालिमों को अल्लाह ताला हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता। ये नुक्ता आगाज होता है उम्मते मुस्लिमा के बिगाड़ की वजह पिछली कौमों के बिगाड़ की तरह हमेशा गैर मुस्लिमों की पैरवी है, उनसे मरूबियत, उनका रोब, उनके तौर तरीके। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनके दिलों का हाल क्या है, फतरल्लसी नफी कुलूबिहिम मरदुन युसारे ऊ नफीहिम, आप देखेंगे कि जिनके दिलों में बीमारी है वो दौड़ दौड़ कर इनमें घुस रहे हैं और कहते हैं हमें खतरा है, ऐसा ना हो कि कोई हादसा हम पर पड़ जाए। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला फतह दे या अपने पास से कोई और चीज लाए, फिर तो ये अपने दिलों में छुपाई हुई बातों पर बेतरा नादिम होने लगेंगे। और इसके बरक्स वयकूलुल्लज़ीन आमनू, और ईमानदार कहेंगे क्या यही हैं वो लोग जो बड़े मुबालगे से अल्लाह की कसमें खा खा कर कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, इनके अमल गारत हुए और ये नाकाम हो गए। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सलास हुआ आयत 53 पे। क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने इस पूरी सूरत में हर मुमकिन तरीके से उम्मते मुस्लिमा को गैरों के शर से बचाने की कोशिश की। जो उन्होंने किया तुम ना करो, और जो वो नहीं कर सके वो तुम करो, और वो क्या था, शरीयत का नेफास। और अगर फिर भी नहीं मानते, अब जरा सा रिलैक्सेशन फील करें, टेक अ डीप ब्रेथ, क्योंकि इतना कसरत से जिक्र हुआ है इसमें तीनों कौमों का इकट्ठा कि अब ऐसे लग रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं जो कहना था कह दिया। अब गौर से सुनो, जैसे मैं कहूँ कि कान खोल कर हम सुने क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यरतद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौम। अब यहाँ इस आयत में अल्लाह ताला एक धमकी भी दे रहे हैं, और इन मुश्किल हालात में जो दीन पे जमे उनको खुशखबरी भी। बहुत खूबसूरत आयत है, घंटों बात हो सकती है इस पे। ऐ ईमान वालो, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए, मुरतद हो जाए, तो अल्लाह का क्या जाता जाए? क्योंकि तो अल्लाह ताला बहुत जल्द ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह ताला की महबूब होगी, और वो भी अल्लाह ताला से मोहब्बत करेगी। जरा सा गौर व फिक्र कर ले, ऐ ईमान वालो, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह ताला बहुत जल्द ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह की महबूब होगी, और वो भी अल्लाह ताला से मोहब्बत रखती होगी। साथ साथ दुआ करें, आमीन। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल करना। वो नरम दिल होंगे मुसलमानों पर और सख्त और तेज होंगे कुफार पर, अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह भी ना करेंगे। ये है अल्लाह का फजल जिसे चाहे दे। अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाला और जबरदस्त इल्म वाला है। क्या समझ आया? हम में से कोई भी अल्लाह की मजबूरी नहीं है, वो तो सब कुछ खुद करने वाला है। इसीलिए आगे फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। मुसलमानों, तुम्हारा दोस्त खुद अल्लाह है और इसका रसूल हर ईमान वाले हैं जो नमाजों की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और रुकू यानी खुशियो खुदू करने वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह ताला से और इसके रसूल से और मुसलमानों से दोस्ती करे, वो यकीन माने कि अल्लाह ताला की जमात ही गालिब रहेगी। मुसलमानों, इन लोगों को दोस्त ना बनाओ जो तुम्हारे दीन को हंसी खेल बनाए हुए हैं। हाँ, वो इनमें से हों जो तुमसे पहले किताब दिए गए हों या कुफार हों, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह ताला से ही डरते रहो। वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन। क्या पता चला? आइए तदब्बुर करते हैं और अमल की बात। इनायतों से नेक अमाल में सबकत करनी है, फस्तबिकुल खैरात की सूरत में। माशरे में फैली हुई बुराइयों के नुकसान से दूसरों को आगाह करना, अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाने वालों से दूर रहना और दिल की इसलाह की दुआएं करनी है, कुरान पाक से रहनुमाई। शरीयत का मकसद लोगों की आजमाइश है। मोमिन को मामला फहम होना चाहिए। जिंदगी बहुत थोड़ी है, नेकियों में भाग दौड़ करें। यहूदों नसारा से दिली दोस्ती नहीं करनी और इनके वसाइल के फितनों से बचना, यानी उनके वो वसाइल इस्तेमाल कर करके उनकी गुलामी नहीं करनी जो बाद में आपको इस्लाम के खिलाफ चीज़ों पे माइल कर दें। गौर व फिक्र, कुरान पाक पिछली आसमानी किताबों पर मुहैमिनन है। मुहैमिनन हैमना से, मुर्गी का अपने बच्चों को परों के नीचे छुपाना। अल्लाह ताला का बड़ा खूबसूरत नाम है अल मुहैमिन। उसकी तफसीर में इस पे बहुत बात है। कुरान के मुहैमिन होने से क्या मुराद है? पिछली किताबों की सब सही बातें कुरान में। आप कह सकते हैं कि आज सूरत मायदा में हमने तौरात की बहुत सी आयतें पढ़ ली, जो ठीक चीजें थी वो इस कुरान ने छुपा ली अपने अंदर और जो गलत चीजें थी उसका जिक्र कर दिया। इसी तरह बुरे गुमान और बदजनी बुराई की तरफ ले जाते हैं, इसीलिए किसी से भी बुरा गुमान नहीं रखना। दुश्मन के साथ बर्ताव में सख्ती और दावत में नरमी का रवैया अख्तियार करें। अल्लाह का फजल है कि उसने मोमिनों को शानदार खूबियों से नवाजा है। और सबसे बड़ी बात क्या है? कभी भी इस्लाम के किसी रिचुअल का मजाक नहीं उड़ाना। अगली आयात में खास वाकया भी आता है कि एक शख्स था जो अजान का मजाक उड़ाता था। जब उसमें अशहद अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह आता था तो कहता था झूठा जलकर खाक हुआ। बाद में उसके अपने साँचे ही हो गया, उसके अपने खैमे को आग लग गई और वो अंदर जल गया। तो कभी इस्लाम के किसी रिचुअल, किसी शायर का मजाक ना उड़ाइए। वैसा ना दई तुम इलासलातखजूहा खुजुआबा। और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वो इसे हंसी खेल ठहरा लेते हैं, ये इस वास्ते से कि वो बेअक्ल हैं। आप कह दीजिए कि यहूद और नसारा, तुम हमसे सिर्फ इसीलिए दुश्मनियां कर रहे हो कि हम अल्लाह ताला पर और जो कुछ हमारी जानिब नाजिल किया गया है और जो कुछ इससे पहले उतारा गया इस पर ईमान लाए हैं, और इसलिए भी कि तुम में से अक्सर फासिक हैं। कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि इससे भी ज्यादा बुरे अजर पाने वाला अल्लाह ताला के नजदीक कौन है? वो जिस पर अल्लाह ताला ने लानत की और इस पर गुस्सा हुआ और इनमें से बास को बंदर और सुअर बना दिया। इस आयत से पता चलता है कि बनी इसराइल को सिर्फ बंदर ही नहीं बल्कि सुअर भी बनाया गया। और जिन्होंने माबूदाने बातिल की परस्तिश की, यही लोग बदतर दर्जे वाले और यही राह रास्त से ज्यादा भटकने वाले हैं। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वो कुफर लिए हुए ही आए थे और इसी कुफर के साथ ही गए भी। और ये जो कुछ छुपा रहे हैं इसे अल्लाह ताला खूब जानता है। आप देखेंगे कि इनमें से अक्सर गुनाह के कामों की तरफ और जुल्म और ज्यादती की तरफ और माले हराम खाने की तरफ लपक रहे हैं, और जो कुछ ये कर रहे हैं ये नहायत बुरे काम हैं। इन्हीं के आबिदो आलिम झूठ बातों के कहने और हराम चीजों के खाने से क्यों नहीं रोकते? लौला यनहाहुम रब्बानीयून वल अखबार अन कौलिहिमुल इस वक्लिहिमुस सख्त। आज उम्मत मुस्लिमा के उलमा के लिए भी ये आयत एक क्राइटेरियन है कि ऐसी चीज़ों से ज़रूर रोकना चाहिए जो लोगों को गलत चीज़ों पे ले जाए। फिर आगे यहूद की एक हद से बढ़ी हुई बात, वकालत यहूद यदुल्लाही मगलूला, और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, नाउज़ुबिल्ला, इन्हीं के हाथ बंधे हुए हैं और इनके इस कौल की वजह से इन पर लानत की गई, बल्कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ खुले हुए हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है, और जो कुछ तेरी तरफ तेरे रब की जानिब से उतारा जाता है वो इनमें से अक्सर को तो सरकशी और कुफर में बढ़ा देता है, और हमने इनमें आपस में क़यामत तक के लिए अदावत और बुगस डाल दिया है, और जब कभी ये लड़ाई की आग को भड़काना चाहते हैं तो अल्लाह ताला इसे बुझा देता है। ये मुल्क भर में शर और फसाद मचाते फिरते हैं और अल्लाह ताला फसादियों से मोहब्बत नहीं करता। ये बातें कौन कह रहा है? जिसने उस कौम को पैदा किया। बनाने वाला ज़्यादा जानता है कि कौन क्या करता है क्या नहीं करता। अल्लाह को उनसे कोई बुगस नहीं है, उनके करतूत बुरे थे। इसीलिए अब आगे देखिए आयत 65 में बहुत प्यारा एक दावतनामा है अहले किताब की तरफ, वलो अन्ना अहलल किताब आमनू वत्तकू लकफ्फरना अन्हुम सय्यातिहिम वलअदखलनाहुम जन्नातिन नईम। और अगर ये अहले किताब ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम इनकी तमाम बुराइयां माफ फरमा देते और जरूर इन्हें राहत और आराम की जन्नतों में ले जाते। वलो अन्ना मकाम उत्तौरात वल इंजील व माउन्जिल इलैहिम मिर रब्बिहिम लाकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। इसको भी हाईलाइट कीजिए। आज भी इस्लाम नाफिस होगा तो जो बरकतें उतरेंगी, जो रहमतें उतरेंगी, वो इस आयत की रोशनी में सुनिए। और अगर ये लोग तौरात और इंजील और इनकी जानिब जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल फरमाया गया है इनके पूरे पाबंद रहते तो ये लोग अपने ऊपर से और नीचे से रोजियां पाते और खाते। एक जमात तो इनमें से दरमियाना रविश की है, बाकी इनमें से बहुत से लोगों के बुरे आमाल हैं। क्या पता चला कि अल्लाह ने शरीयत के निफाज को एक रहमत करार दिया। इधर जितना ज्यादा शरीयत नाफिज होगी उतनी बरकत होगी। एक हदीस में था कि एक हद का नाफिज होना 40 साल की बारिश से ज्यादा हरियाली लाता है। और आप देख लीजिए, तारीख पढ़ लीजिए अपने मुल्कों की भी, जब शरीयत नाफिज हुई तो तेल निकला, सोने के पहाड़ निकले। आज हमारे अपने मुसलमान मुल्कों में शरीयत नाफिज होगी तो इंशाल्लाह ये सारी खैर होंगी। इसीलिए आगे अल्लाह के नबी को फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल जो कुछ भी आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया है इसको पहुंचा दीजिए। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने अल्लाह की रिसालत अदा ना की और आपको अल्लाह ताला लोगों से बचा लेगा। बेशक अल्लाह ताला काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता। इसको हाईलाइट कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत दी, हलाल और हराम का इलम देने वाले थे। ये आयत भी सिराज मुनीरा से मुतल्लिक आयत है आपके मेरे लिए, कि आपने अपनी जान को खतरों में डालकर इस्लाम दिया, अमल के नुक्ते दिखाए, और हम सब का भी आज यही फर्ज है कि अल्लाह के दीन को मनो अन वैसे ही पहुंचाए जैसे कि हम तक पहुंचा, और लोगों की बातों और अपनी जान के जाने का खतरा न रखे, क्योंकि जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। और इसी तरह आगे भी अल्लाह ताला ने फरमाया, आप कह दीजिए कि अहले किताब तुम दरअसल किसी चीज पर नहीं हो, यानी तुम्हारी अल्लाह की नजरों में कोई वैल्यू ही नहीं है, जब तक कि तौरात और इंजील को और जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से उतारा गया है कायम ना करो। जो कुछ आपकी जानिब आपके रब की तरफ से उतारा है वो इनमें से बहुत सारों को शरारत और इनकार में और भी बढ़ा देगा, तो आप इन कुफार पर गमगीन ना हो। इसको नोट करिएगा, फला तासअल अल कौमिल काफिरीन। अल्लाह के नबी को गुस्सा आता था कि गम आता था? गम आता था, दर्दमंद दिल को दूसरों के गलत काम देकर गम आता है, और आज हमें गुस्सा आता है। ये नहीं कहा फला तग़ज़ब अलल कौमिल काफिरीन। तो अल्लाह के नबी का दिल ज्यादा बड़ा था कि हमारा? और आगे कुल या अहलल किताब कह के दोबारा उन सब को जमा कर दिया एक ही आयत में, जो बातिल अदियान पहले गुजर गए। मुसलमान यहूद सितारा परस्त और नसरानी कोई भी हो, जो भी अल्लाह ताला पर और क्यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे वो महज बेखौफ रहेगा और बिल्कुल बेगम हो जाएगा। हमने बिल यकीन बनी इसराइल से अहदो पैमान लिया और इनकी तरफ रसूलों को भेजा, जब कभी रसूल इनके पास वो अहकाम लेकर आए जो इनकी मर्जी के खिलाफ थे तो उन्होंने एक जमात को झुटलाया और एक जमात को कत्ल कर डाला। इसको हाईलाइट करिएगा। आज भी यही है। मनपसंद बातें करने वालों को सर पे चढ़ा दो, और जो बुरी बात करें तो उनके लिए क्या है, खत्म कर दो। तो असल मसला पता क्या है, ख्वाहिशों का। ला तहवा अनफुसहुम फरीकन कज़्ज़बू व फरीकन यक्तुलून। तो क्या पता चला आपको मुझे कि कुरान आप पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह एक एक लफ्ज़ पढ़ रहे हैं। कोई आयत ऐसी दिखे जो आपको अमल में मुश्किल लगती है तो फौरन दुआ कर लें कि अल्लाह मेरी ख्वाहिशों की वजह से मुझे किताब से दूर ना करना। आइए तदब्बुर करते हैं और अमल। अजान सुनकर जवाब देना है और मसनून दुआ मांगनी है, हराम कमाई से दूर रहना और बातिल तरीकों से माल खाने से बचना है, हिकमत के साथ बुराई से मना करें और खैर की नसीहत करें, कुरान पाक से रहनुमाई, दीन को पूरी तरह नाफिज करना है अपने जिस्म पे अपने घर पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाँ तक हमारा दायरा कार हो इससे खैर और बरकत आएगी। तौहीद पर ईमान, यहूद और नसारा के मुसलमानों से बुगज रखने की वजह से हमने और भी अपनी तौहीद पक्की करनी है ताकि उनको हम पर और भी गुस्सा आए। अल्लाह ताला नेक बंदों को हर मुहताजी और शर से महफूज रखेगा, इसलिए दिन ब दिन मजीद नेकियां करने की कोशिश करनी है। गौर व फिक्र की बातें, दीनी शायर और अलामात को कमतर समझना और इनका मजाक उड़ाना जहालत की अलामत है, मसलन दाढ़ी, टोपी, हिजाब, निकाब वगैरह। बुराई से ना रोकने वाला बुराई करने वाले ही की तरह है। सुन्नत रसूल भी वही इलाही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी दावत पहुंचाना था, कबूल करवाना नहीं। हमने भी इसी पे अपने आप को रोकना है। अब आगे उनकी खुशफहमियां कहती, सारा कुछ गलत करके भी कहते थे ठीक ही होगा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वह हसीबु अल्ला तकूना फितना, और समझ बैठे हैं कि कोई पकड़ ना होगी, पसंदे बहरे बन बैठे। फिर अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल कर ली, इसके बाद भी इनमें से अक्सर अंधे बहरे हो गए। अल्लाह ताला इनके अमाल को बखूबी जानता है, बेशक वो लोग जो काफिर हो गए इनका कौल है कि मसीह ने मरियम ही अल्लाह है, नऊज़ुबिल्लाह। हालांकि खुद मसीह ने इनसे कहा था कि बनी इसराइल अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा और तुम सब का रब है, यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह ताला के साथ शरीक करता है अल्लाह ताला ने इस पे जन्नत हराम कर दी है, इसका ठिकाना जहन्नम ही है, और गुनाहगारों की मदद करने वाला कोई ना होगा। वो लोग भी कतन काफिर हो गए जिन्होंने कहा अल्लाह ताला तीन में का तीसरा है, सालिसु सलासा। अगर ये लोग अपने इस कॉल से बास ना रहे तो इनमें से जो कुफर पर रहेंगे इन्हें अलबनाक अजाब जरूर पहुंचेगा। ये लोग क्यों अल्लाह ताला की तरफ नहीं झुकते और क्यों इस्तगफार नहीं करते? अल्लाह ताला तो बहुत बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। आपको अल्लाह ताला की मोहब्बत दिख रही है? अल्लाह नहीं चाह रहे कि ये बातिल तरीकों पे और बातिल अकायद पे मर जाएं, बल्कि जब उनको तौबा की दावत दी जा रही है जो अल्लाह के बेटे और खुद अल्लाह करार देते हैं, तो आप सोचिए कि आज उम्मत मुस्लिमा को फिर अल्लाह ताला से कितनी अच्छी उम्मीदें ना रखनी है। तो ज़रूरत है इस बात की कि अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए खैर और हिदायत मांगिए। उनके बातिल अकायद बताने के बाद हजरत ईसा थे क्या? असल हकीकत बताई जा रही है, मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल। सिर्फ ये एक जुमला भी अगर आप ऐसे अकायद रखने वालों को बता दें कि कुरान में तो ये लिखा है, क्या मसीह ने मरियम सिवाय पैगंबर होने के और कुछ भी नहीं, इससे पहले भी बहुत से पैगंबर हो चुके हैं, इनकी वालिदा एक सच्ची रास्तबाज औरत थी, दोनों माँ बेटा खाना खाया करते थे, यानी दीनदार होना और खाना खाना कोई दो मुख्तलिफ चीजें नहीं है, बशरी तकाजे हर एक के साथ होते हैं। आप देखिए कि किस तरह हम इनके सामने दलीलें रखते हैं, और फिर गौर कीजिए कि किस तरह वो फिरे जाते हैं। कुला ताबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम दर्रुम वला नफा। आप कह दीजिए क्या तुम अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हो जो ना तुम्हारे किसी नुकसान के मालिक हैं ना किसी नफे के? अल्लाह ही खूब सुनने और पूरी तरह जानने वाला है। कह दीजिए कि अहले किताब अपने दीन में ना हक गलूफ, अच्छा लफ्ज़ गलूफ होता है, कई लोग उर्दू में गलू पढ़ते हैं, गलूफ, वाओ साइलेंट होगी, नाहक गलूफ और ज्यादती ना करो, और इन लोगों की नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी ना करो जो पहले से बहक चुके हैं और बहुतों को बहका भी चुके हैं और सीधी राह से हट चुके हैं। वदल्लु अन सवाई सबील। तदब्बुर और अमल, शिर्क से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी है, गुनाहों को छोड़ने की दुआ भी करनी है, कोशिश भी करनी है, और दूसरों से दुआ करानी है कि मैं गुनाह छोड़ दूं। कसरत से इस्तगफार करें और अपने साथ साथ अपने छोटे मासूम बच्चों से भी गुनाहों की माफ़ी मंगवाएं, क्योंकि बच्चों के दुआ ज़्यादा कबूल होती है। पुरानी रहनुमाई, दुनिया का साजो सामान एक धोखा है, लंबी लंबी आरज़ुएं अल्लाह के रास्ते से रोकने का सबब है। तो सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, इस मुहावरे पे गौर करते रहिए। शिर्क के होते हुए कोई नेकी काम नहीं आती, सबसे पहले शिर्क का इल्म लीजिए, तौहीद को सीखें, शिर्क के राज जानिए, ताकि आपके मेरे नमाज रोज़े हज ज़कात भी कबूल हों। गैर मुस्लिमों के अकायद का जवाब अकली दलील से पेश करने में कोई हर्ज नहीं, इसके लिए जिस हद तक मुमकिन हो दावा कीजिए। गौर व फिक्र की बातें, झूठे गुमान और खुश फहमियाँ अल्लाह की फरमा बरदारी की राह में रुकावट हैं। खुश फहमियों से निकल कर सही फहमियों में आना, अपना सही एनालिसिस किया करें, मैं कहाँ खड़ी हूँ। अल्लाह ताला बंदों की तौबा कबूल करके इन पर बेशुमार लुत्फ़ो करम फरमाता है, इसलिए हमने भी तौबा करनी है। दाई दीन का काम लोगों को अल्लाह की रहमत से जोड़ना है, बाकी काम अल्लाह के जिम्मे। अब पारे के आखिर की आयतों में ज़रा देखिए कैसी बड़ी धमकी है उनके लिए। लुइन अल्लज़ी न कफ़रु मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्ने मरियम। बनी इसराइल के कुफार पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी लानत की गई, इस वजह से कि वो नाफरमानियाँ करते थे और हद से आगे बढ़ जाते थे। आपस में एक दूसरे को बुरे कामों से जो वो करते थे रोकते न थे, वो जो कुछ भी ये करते थे यकीनन ये बहुत बुरा था। इनमें से बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वो कुफार से दोस्तियाँ करते हैं, जो कुछ उन्होंने अपने लिए आगे भेज रखा है वो बहुत बुरा है, कि अल्लाह ताला इनसे नाराज़ हुआ और वो हमेशा अजाब में रहेंगे। अगर इन्हें अल्लाह ताला पर और नबी पर और जो नाजिल किया गया इस पर ईमान होता तो ये कुफार से दोस्तियाँ ना करते, लेकिन इनमें से अक्सर लोग फासिक हैं। यकीनन आप ईमान वालों का सबसे ज़्यादा दुश्मन यहूद और मुशरिकों को पाएंगे, और ईमान वालों से सबसे ज़्यादा दोस्ती के करीब आप यकीनन इन्हें पाएंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं। ये इसलिए कि इनमें उलमा और इबादत के लिए गोशा नशीन अफराद पाए जाते हैं, और इस वजह से कि वो तकबर नहीं करते। वअन्नहुम ला यस्तकबिरून, यानी दुश्मनों में से कम दर्जे के वो दुश्मन हैं। ये है जी अल्लाह सुबहान तआला की खूबसूरत सुन्नत के छांट के लग कर देता है, सारी बुराई करते हुए अच्छी बातों को पीछे नहीं डाल दिया जाता। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पारा पूरा हुआ। ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस सफ़र को आगे से आगे बढ़ाकर पूरा करने वाला बना दे। आज की मतरूक सुन्नतों में से एक सुन्नत, आखिरी तशहुद के बाद तवील दुआएं करना, ये नबी सल्लम की सुन्नत थी। हम अमूमन एक ही दुआ करते हैं कभी, कौन सी? रब्बना आतिना फिर दुनिया, कुछ करते हैं कुछ, रब्बी जालनी मुकीम असलात, ये भी कर सकते हैं। लेकिन सुन्नत क्या थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई जब तशहुद पढ़ ले तो चार चीज़ों से अल्लाह की पनाह तलब करे, ए अल्लाह मैं जहन्नुम के अजाब से और कब्र के अजाब से तेरी पनाह में आता हूँ, और ज़िंदगी और मौत में आजमाइश से और मसीह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह में आता हूँ। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अरबी में दुआ कैसे है? आपने फरमाया, इज़ा फ़रग़ अहदुकुम मिन तशहुदी तशहुद आखिरी फल यतअव्वज़ बिल्लाहि मिन अरबा, मिन अज़ाबी जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्री व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रिल मसीहिद दज्जाल। तो इस दुआ को याद भी कीजिए, बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, और ये दुआएं जो है इंशाल्लाह हमारी नमाजों में रंग लाएंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं नमाजों के रकतें भूल जाती हूँ, हम ये करते थे वो करते थे, क्यों? इसलिए कि हमें दुआएं वैरायटी के साथ नहीं याद होती। तो एक ही खाना हर रोज़ खाएं तो उसका फिर असर नहीं रहता ना हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह से इन दुआओं को याद कीजिए और इस पे गौर व फिक्र कीजिए, अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो और बेहतरीन तरीके से हम इन चीज़ों को अपने लिए लें। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।